नमस्कार श्रोताओं, खेल खबरों के आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या तोमर, और आज हमारे साथ तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आइए सबसे पहले जानते हैं खेल जगत की मुख्य खबरें। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से जारी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में रविचंद्रन अश्विन पहले स्थान पर। समर्थ चैंपियनशिप दृष्टिबाधित क्रिकेट के तीसरे T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अजेय बढ़त बनाई। पैरा निशानेबाजी विश्व कप में मनीष नरवाल ने 2 रजत पदक जीते। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स मुकाबले में लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत ब्रिटेन के बर्मिंघम में अब से कुछ ही देर में अपना अभियान आरंभ करेंगे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से जारी है। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। गुजरात जायंट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स की टीम ने 15वें ओवर में 86 रन बना लिए हैं, और वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। राकेश, आप इसको कैसे देखते हैं? कितनी टीम, कौन सी टीम आपको यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है?
देखिए, ये लास्ट की मतलब जो गेम है ये बिल्कुल लास्ट का है, तो जो टॉप टीम है टेबल पे वो आखिरी टीम से खेल रही है। गुजरात लास्ट है और जो दिल्ली की टीम है वो टॉप टीम है। तो दिल्ली की टीम को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ये मैच आराम से जीतेंगे, क्योंकि दोनों टीमें अभी तक 7-7 मैचेस खेल चुकी हैं। गुजरात 2 जीती है, 5 हारी है, और दिल्ली 5 जीती है, 2 हारी। तो इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस टीम का जो है मतलब जो टीम एक्सपेक्टेड है जीतने के लिए, और वो है दिल्ली।
और प्ले ऑफ में वैसे भी अभी 3 टीम आ चुकी हैं
जी, उसमें तो अभी तो खैर मतलब क्वाइट मतलब नेचुरली है कि जीती बाहर हो जाएगी उसमें तो सबसे पहले तो, बट बाकी जो एलिमिनेटर है आपका, जो पहला एलिमिनेटर है उसमें मेरे ख्याल से आरसीबी इज ऑलरेडी थ्रू। तो बाकी तो दिल्ली तो एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली चैंपियनशिप जीतेगी, मतलब इस बार जिस कंसिस्टेंसी से खेल रही है।
आइए सुनते हैं इस पर विस्तृत रिपोर्ट।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम 19 ओवर में 113 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में बेंगलोर की टीम ने 15 ओवर में जीत हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी अंक तालिका में 7 मैचों में से 5 में जीत हासिल करने के साथ पहले स्थान पर है। वहीं गुजरात जायंट्स की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। ये मैच दिल्ली की टीम के लिए सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्का करने के नजरिए से काफी अहम है। प्लेऑफ के लिए 3 टीमें दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर क्वालिफाई कर गई हैं। इसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का एलिमिनेटर मुकाबला खेलना तय हो चुका है, लेकिन उनके सामने कौन सी टीम होगी ये दिल्ली और गुजरात के बीच होने वाले आज के मुकाबले से तय होगा। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की रैंकिंग की शीर्ष 10 में वापसी हुई है। आइए सुनते हैं विस्तृत रिपोर्ट।
10 शीर्ष गेंदबाजों में भारत के 3 गेंदबाज अश्विन, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। अश्विन ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में 9 विकेट लेने का फायदा मिला है। उन्होंने धर्मशाला में श्रृंखला के 5वें टेस्ट मैच की पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए थे। उन्होंने अपने करियर में 36वीं बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया। वहीं कुलदीप यादव भी टेस्ट रैंकिंग में 15 स्थानों की लंबी छलांग के साथ 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टीम ने इस मैच को जीतकर श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। रैंकिंग में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 739 अंकों के साथ 9वें स्थान पर और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 733 अंकों के साथ 10वें स्थान पर हैं। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
राकेश, इसका कितना असर दिखेगा हमारे हमारी टीम पर जो आने वाले मैचेस में किस तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि हमारे तीन बल्लेबाज टॉप टेन में पहुंच चुके, गेंदबाज टॉप टेन में पहुंच चुके हैं।
देखिए अभी तो ये रैंकिंग तो अभी कुछ देर ऐसी रहेगी क्योंकि अब कोई इंडिया के कोई मैचेस हैं नहीं।
जी जी,
अभी तो जो है पूरा फोकस आपका चेंज हो जाएगा ओडीआई पे और वर्ल्ड का जो है T20 है उसके लिए, तो अभी T20 का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने किया है ये अभी कुछ वक्त रहेगा।
हाँ।
क्योंकि ये जो रेस है ये हो रही है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने की। अब इंडिया नंबर वन टीम है अभी रेस में, क्योंकि आपने होम आपके होम ग्राउंड पे जीते हैं, आपको 12 पॉइंट जो आपको मिलते हैं और जो पहला मैच आप हारे उससे आपको माइनस भी होता है उसमें। तो अभी तक जो उन्होंने किया है कमाल किया है, और जब इंडिविजुअल प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उनकी रैंकिंग जब ऊपर जाती है तो एक्चुअली कोई ऐसे डायरेक्ट उसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये जरूर होता है कि जब आप कहते हैं कि साहब टॉप टेन में हमारे तीन गेंदबाज हैं, तो ये एक सामने वाली टीम के ऊपर एक थोड़ा सा ये जरूर रहता है कि ये लोग फॉर्म में है, ये टीम अभी जो आई है ये फॉर्म वाली टीम खेल रही है।
और अश्विन लगातार अपनी परफॉर्मेंस में काफी इजाफा करते जा रहे हैं।
ये इनके ना आज शाम से एक वो चल रहा है, क्या बोलूंगा, एक मीम तो नहीं बोलूंगा, एक ऐसा वो है कि उन्होंने पहले मैच में अपने डेब्यू मैच में 9 for 128 लिया था, 9 विकेट लिए थे 128 रन देके। 100वां टेस्ट जो खेला उसमें भी 9 विकेट लिए 128 रन देके।
बिल्कुल,
तो लोग कह रहे हैं ये तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, मतलब पहला और 100वां मैच, बट खैर ये तो लाइक हल्की बात है, लेकिन द पॉइंट इज कि कंसिस्टेंसी देखिए आप इनकी कि मतलब 500 से ज्यादा विकेट, 100 से ज्यादा टेस्ट, आप एवरेज का आपका पर इनिंग्स अगर आपको बॉलिंग मिलती है तो 2 से ज्यादा विकेट आप ले रहे हैं 10 में से, तो ये बहुत अच्छा एवरेज माना जाएगा, और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, और जिस विकेट पे बॉल ग्रिप करता है वहां पे इनको खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी अभी हमने देखा था धर्मशाला की सेकेंड इनिंग्स में, यकीन मानिए इन्होंने कुछ गेंदें जो इन्होंने डाली हैं वो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल, और हालांकि सामने वाली टीम भी ऐसी थी कि थोड़ा अटैकिंग मोड में खेल रहे थे, उसमें फिर आप अश्विन से बच नहीं सकते हैं अगर आप उनको ठीक से नहीं खेलते हैं या देख के नहीं खेलते हैं आप, तो अश्विन को उसका फायदा मिला। तो और देखिए ये इतने विकेट का जो नंबर वन, ये इसके बावजूद भी है कि इनके कंसिस्टेंसी इनको खेलने का मौका मिलता नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये ओवरसीज विकेट से इनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए इनको मौके भी नहीं मिलते हैं पूरे, उसके बावजूद अगर ये वर्ल्ड नंबर वन है तो कुछ तो बात है।
विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2024 में स्टार भारतीय पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल ने 2 रजत पदक जीते। पैरा निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में नरवाल ने ये रजत पदक अपने नाम किए हैं। इस विश्व चैंपियन पैरा निशानेबाजी में इसके बाद रुद्रांश खंडेलवाल और संजीव गिरी के साथ मिलकर P1 पुरुष टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता, और दिन की अन्य स्पर्धाओं में R7 वर्ग में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन श्रेणी के भारतीय निशानेबाज फाइनल में जगह बनाने में असफल रहे। इसमें राकेश निदागुंडी क्वालिफिकेशन दौर में 14वें स्थान के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय रहे। पैरा निशानेबाजों का ये प्रदर्शन, इस पर आप क्या कहेंगे राकेश?
हम लोगों का जो शूटिंग है ये काफी कंसिस्टेंट रहा है। हमारे पास जो पैरा ले लीजिए, टेबल टेनिस ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, ये वर्ल्ड लेवल में पैरा लेवल पे हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और जैसे ये तो आपने बताया कि अभी जैसे नरवाल ने जैसे इंडिविजुअल में भी मेडल जीता, टीम ने भी जीता, उसमें एक नाम और जोड़ दीजिए रुबीना फ्रांसिस का जिन्होंने ब्रोंज मेडल भी जीता है आज। ये न्यूज थोड़ी बाद में आई, शाम की न्यूज है ये। तो मेन में भी आ रहे हैं मेडल, वुमेन में भी आ रहे हैं मेडल। और ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी है यही हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि पैरा का जो स्टैंडर्ड है, चाहे डिसेबिलिटी लेवल्स अलग अलग होते हैं इसमें, तो हमारे जो अभी जो सरकार की जो नीति है ये पहले से बहुत हटके, मतलब मैंने जितना देखा है पैरा में बहुत मेडल आ रहा है, क्योंकि फोकस आपने इतना दिया है और मेडल्स की बराबरी हो गई है ऑलमोस्ट। हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रीटमेंट है सरकार का वो ऑलमोस्ट दोनों के लिए सेम है, ये बहुत बड़ी बात है। जहां तक मैं स्पोर्ट्स जितना मैंने फॉलो किया है करीब 40 सालों से, मुझे नहीं पता कि ये स्थिति जो आज की है ये मुझे कभी याद आती है कि मैंने कब देखी थी पहले, ऐसा कभी होता नहीं था।
बिल्कुल, ये सरकार की नीतियों का और एथलीट्स को जो सुविधाएं दी जा
बहुत ज्यादा ये मतलब ये अगर आप एक एथलीट से जाके पूछेंगे तब पता लगता है कि कितना फोकस है उनको. अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कैश इंसेंटिव्स हैं, जो आप सोच सकते हैं जो एक एबल बॉडीड एथलीट को मिलते हैं, अब ये सब इनको मुहैया किया जाता है.
वही आर आठ वर्ग में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के लिए भारतीय पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा के अंतिम स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रही हैं और मोना अग्रवाल 407.9 के स्कोर के साथ उनसे एक स्थान नीचे रही हैं. ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स मुकाबले में लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत ब्रिटेन के बर्मिंघम में अब से कुछ ही देर में अपना अभियान शुरू करेंगे और लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन से होगा जबकि राजावत का सामना इंडोनेशियाई खिलाड़ी चिको ओरा इडी वाडियो से होगा. विश्व की नंबर वन पुरुष युगल जोड़ी भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. उनका मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हिंद्रा सेतियावन की जोड़ी से होगा. राकेश, इतना टक्कर का मुकाबला है,
बेहद टक्कर का मुकाबला
तो
है.
आप क्या कहेंगे कि क्या हमारे
ये जब मैं ड्रॉ देखा था, नहीं देखिए एक चीज होगी कि उनका एक समय था जब ये लोग बिल्कुल वर्ल्ड के टॉप जोड़ी थी. आज इनकी रैंकिंग नहीं है क्योंकि ये लोग वापस एक बार एक साथ मिलके आए, लेकिन टफ मैच होगा क्योंकि आप एक ऐसे प्रतिद्वंदी के सामने हैं जिनको कि जिन्हें ऐसे ऐसे बड़े स्टेज पे खेलना आता है, बहुत खेले हैं, बहुत सालों से खेले हैं, तो ये एक अच्छा मतलब मैच अच्छा है क्योंकि अगर आप ये मैच जीत के जब आप सेकंड राउंड में पहुंचेंगे सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचेंगे. आप एक किसी टीम को नहीं हरा के पहुंच रहे हैं और आप वर्ल्ड नंबर वन हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे एक्सपेक्टेशन भी हैं और आपका फॉर्म अभी बहुत अच्छा चल रहा है इंडियंस का क्योंकि तीन लगातार फाइनल खेले, एक जीते.
और कल का भी अगर मुकाबला देखें मंगलवार का तो उसमें भी पीवी सिंधु ने जैसे कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई.
वो एक एक्सपेक्टेड था लेकिन उनका मुकाबला एक राउंड छोड़ने के बाद अगर वो भी जीत जाते हैं उसके बाद जो उनका मैच है वो टॉप सीड के साथ है और वो एन यंग जो है वो वर्ल्ड नंबर वन है, कोरिया की युवा खिलाड़ी है, उनके साथ सिंधु का रिकॉर्ड बहुत खराब है.
हाँ.
तो अब मैं देख रहा था जब ड्रॉ मैंने देखा तो मैंने कहा अरे बाप रे ये तो मतलब एकदम से जो ड्रॉ है ये सिंधु बाकी अगर किसी के साथ भी खेल लेती और देखिए सिंधु अभी उनको कोई भी वरीयता प्राप्त नहीं है इस टूर्नामेंट में. बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि ऑल इंग्लैंड में सिंधु खेल रही हैं और उनकी सीडिंग नहीं है.
हाँ, क्योंकि
बिल्कुल इंजुरीज थी, फॉर्म अच्छा नहीं था, दोनों चीजें हुई और अब वो कोशिश कर रही हैं कि यू नो जब तक ओलंपिक्स आए अपना फॉर्म एक बार फिर से हासिल कर लें.
वही किदांबी श्रीकांत से भी काफी उम्मीदें थी.
श्रीकांत किदांबी और देखिए ये मजे की बात है कि जिनसे वो हारे हैं वो वर्ल्ड नंबर यू नो लाइक वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, ओलंपिक चैंपियन है और आपके यू नो जैसे हम कहते हैं विक्टर एक्सेलसन. और मजे की बात ये है ये दोनों जूनियर चैंपियनशिप जब वर्ल्ड जूनियर खेले थे 2010 में ये दोनों सेमीफाइनल खेले थे और वो सोचिए कि वो आज कहां से कहां पहुंच गए. हालांकि श्रीकांत भी वर्ल्ड नंबर वन रह चुके हैं लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और ये देखिए और कल का स्कोर देखिए 21-9 ये जो फर्क है दोनों खिलाड़ियों में ये बहुत ज्यादा
हमारे. और त्रिशा जोड़ी और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी महिला युगल में इंडोनेशिया की अप्रियानी राहियू और सिटी फाविया सिल्वा रामधंती से 21-18 21-12 से बाहर हो गई हैं.
ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए था क्योंकि ये जो इंडोनेशियन ये जो एक पैर है ये कोई बहुत माना जाना ऐसा कोई जाना माना पैर नहीं है लेकिन कल मतलब पता नहीं कितनी गलतियां की इन्होंने. मैंने वो मैच देखा रात को, लेट नाइट मैच था. कुछ अनफोर्स एरर्स, कुछ एंटिसिपेशन में जो एक अब छोड़ देते हैं कुछ चीजें कि वो उठाएगी या मैं उठाऊंगी ऐसे उस चक्कर में काफी गलतियां हुई कल, तालमेल में बेहद कमी.
विश्व रैंकिंग में आठवें नंबर पर काबिज प्रणॉय ने पहले गेम को 21-14 से अपने नाम कर लिया लेकिन 67 मिनट तक चले इस मैच में सातवीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी को बाकी के दोनों गेम में हार का मुंह देखना पड़ा. तो मतलब अगर हम एकल इवेंट की बात करें तो अभी आपको क्या लगता है कि कितने जैसे लक्ष्य सेन
का अभी तो रीसेंट फॉर्म उनका ठीक है लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि इंजरीज से बाहर आ रहे हैं वो. तो प्रणय से जरूर उम्मीद थी मुझे कि वो टॉप एट में शायद अपने जो उनको जो सीडिंग मिली है अपने वरीयता के हिसाब से खेलेंगे लेकिन वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग लॉस था कल क्योंकि देखिए प्रणय बड़ा लेट ब्लूम हुए हैं. बाकी लोग अगर आप देखें तो 20 से लेकर 25 के बीच में उनका अच्छा हो जाता है लेकिन ये 25 के बाद इनका जो है अच्छा गेम निकला है.
श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो स्पोर्ट्स टाइम की पूरी टीम के साथ दिव्या को दीजिए अनुमति कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की। राकेश आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या।